नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। क्या टैक्स वसूली के मामले में मोदी राज ने अंग्रेजी राज को भी पीछे छोड़ दिया है? लोगों के जहन में ये सवाल बड़ा है, लेकिन किसकी हिम्मत जो सवाल भी उठाए। इसीलिए कॉलम अपन तो कहेंगे में आज मेरे विचार का शीर्षक है, अंग्रेजों का एक नमक टैक्स और मोदी राज में हवा, पानी, सड़क, बिजली सब पर टैक्स। खबर छोटी है, हवा को सांस लायक बनाने के प्यूरिफायर पर सरकार 18% जीएसटी वसूलती है। इसी पर सरकार ने अदालत को यह कहते हुए हैसियत बताई कि हम ऐसे टैक्स हटाना, कम करना नहीं करेंगे। सो भारत के नागरिकों को यदि हवा, सांस शुद्ध अपने जतन से लेनी है तो पहले मोदी राज को भारी टैक्स दो। अंग्रेजों के समय नमक के दारोगा का एक जुमला था, अब तो मोदी सरकार हवा, पानी, नमक, आटे, खाने के सामान, सड़क, बिजली सभी की दरोगा है। उसे भारत की भेड़ बकरियों का अनिवार्यता खून चूसना है। यदि सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को विकसित नरक बनाया है तो नरक में भी जनता का जीना टैक्स देकर है। सांस के जुगाड़ में जेब खाली करनी है। बात न छोटी है न मामूली, इसलिए कि जैसे हवा का मामला है वैसे पानी का भी मामला है। पानी के प्यूरिफायर यानी आरओ के लिए भी टैक्स वसूला जाता है। स्वतंत्र भारत की मोदी सरकार और अंग्रेज मालिक का फर्क इस सत्य से जाहिर होता है, जो ब्रिटेन में नल का पानी घर रसोई का आधार है, वह साफ पेयजल है, लगभग फ्री। वही भारत में घर रसोई में आरओ से पानी को शुद्ध कर पानी का उपयोग होता है। वही सरकारी जल सप्लाई लूट का प्रबंध है। राजधानी के जल बोर्ड के सर्दियों में भी 3-4-5 हजार रुपए के बिल आते हैं, इसलिए क्योंकि स्वतंत्र भारत के हाकिमों, नौकरशाहों और व्यवस्था तंत्र का शासन अब उस अवस्था में है जो 140 करोड़ लोगों की आर्थिकी को जिंदा बताने का सूत्र जीएसटी वसूली के आंकड़े से प्रचारित करती है। हर महीने मोदी सरकार भेड़ बकरियों से टैक्स वसूली के रिकॉर्ड आंकड़े जारी करके अपनी पीठ थपथपाती है और भेड़ बकरियों का मीडिया नैरेटिव हिनहिनाता हुआ प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता है। अंग्रेज राज में लूटने का प्रतिमान नमक पर टैक्स था, अब हवा पानी पर टैक्स है, जबकि नमक एक वस्तु कमोडिटी है। जिस पर अंग्रेज सरकार का 2-3 पैसे प्रति मन टैक्स था तो स्वतंत्रता सेनानियों का हल्ला हुआ कि देखो हिंदुस्तानियों को अंग्रेज कैसे लूट रहे हैं। गांधी ने दांडी मार्च किया, आज 2025 में क्या है। देश की राजधानी विकसित नरक के अमृतकाल में सांस ले रही है, हवा जहरीली है, ऐसे में देश का नागरिक या परिवार शुद्ध हवा के जुगाड़ में मशीनें खरीदे तो ऐसा करना मोदी सरकार की निगाहों में लग्जरी है, तभी 18% टैक्स वसूली है। सोचे सरकार ने हवा को जहरीला बनाया या बनने दिया और नागरिक अपने बूते हवा को साफ करने का उपाय सोचे तो उसे पहले सरकार को लग्जरी टैक्स देना होगा। मतलब भारत के नागरिक का साफ हवा या पानी चाहना सोचना भी लग्जरी है, विलासिता है, सो टैक्स देना ही होगा। इसे आप लोक सेवा कहेंगे या लोक लूट? दरअसल नरक काल में लूटना राजधर्म है। अंग्रेज या मुगल राज में लूट का ऐसा नरक काल नहीं था। पिछले 11 वर्षों में खासकर जीएसटी के लागू होने के बाद भारत का लूट तंत्र पूरी तरह स्वच्छंद है। न संसद में बहस होती है, न जनप्रतिनिधियों, निर्वाचित सरकारों के मंत्रियों में विचार विमर्श, जन सुनवाई या परामर्श होता है। एक ही सूत्र है, सत्ता की भूख और फिजूल खर्चियों, खोखली आर्थिकी में कैसे अपने आप को सत्ता विकासमान बतलाए। इसके लिए तंत्र या कि अफसरों का काम अंग्रेजों की लूट परंपरा में नमक, हवा, पानी, सड़क, बिजली, आटा, दाल, पैकेज्ड खाने आदि सबको टैक्स लायक या लग्जरी करार देकर वसूली का रिकॉर्ड बनाना है। मोदी सरकार ने हर बुनियादी चीज पर जीएसटी से प्रत्यक्ष परोक्ष टैक्स से ऐसी वसूली बनाई है कि नमक पर टैक्स लगाने वाला अंग्रेज लुटेरा वॉरेन हेस्टिंग्स यदि आज जिंदा होता तो वह सोच शर्मसार होता कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे तो वह मात्र चूजा है। घर परिवारों के आरओ वाटर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी है तो हवा के प्यूरिफायर या बोतल बंद पानी पर भी है। अंग्रेज सरकार दिल्ली में नल से पानी पहुंचाती थी तो वह साफ होता था और लगभग फ्री। आज की दिल्ली के नरक निर्माण में पानी न केवल गंदा है बल्कि उसकी कमी का हाहाकार भी है। घरों में जल बोर्ड टैंकरों का पानी 5-10 हजार रुपए महीने का खर्च बनवाता है, न कोई जवाबदेही है और न कोई विरोध हल्ला। शायद इसलिए कि विकसित नरक तो पापी लोगों का वास है। भारत के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मोदी सरकार को चुनने का जो पाप किया है तो नरक तो भोगना ही होगा। नरक के कायदे में तो रहना ही होगा। कोई शिकायत न करे, कोई सोचे नहीं, न अधिकार, न सुनवाई और न जवाबदेही। सांस के मारे चंद बूढ़े लोग इंडिया गेट पर साफ हवा की मांग में इकट्ठे हों तो उन्हें भेड़ बकरियों की तरह उठाकर बंद कर दो। दिल्ली के नरक में मनुष्यगत मांग निषेध है, विरोध वर्जित है तो न कुछ स्वच्छ फ्री है। कोई भी लोक सेवा नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। पता है आपको दिल्ली से जयपुर की 250 किलोमीटर की दूरी के एक्सप्रेसवे का कितना टोल टैक्स है? 1000 रुपए से भी ज्यादा। जबकि मोदी राज के कथित अमृतकाल का 2400 घंटे का नैरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में कायाकल्प है, मगर यह लोक सेवा का नहीं बल्कि लोक लूट का कायाकल्प है। सड़क का टोल टैक्स हो या हवाई यात्रा में प्रति टिकट का, एयरपोर्ट ईंधन टैक्स या बंदरगाहों के टैक्स, सब 11 वर्षों में सुरसा की तरह बढ़े हैं। नतीजतन 140 करोड़ आबादी में 1% आबादी को छोड़कर बाकी सभी उसकी कीमत वैसे ही चुकाते हुए हैं जैसे एक्सप्रेसवे के किनारे रेस्टोरेंट में खान पान की चीजों पर मनमानी टैक्स वसूली है। मैं सचमुच उस अनुभव पर भन्ना गया जब एक्सप्रेसवे के किनारे के एक ढाबे में 2 रोटी, 1 सब्जी, 1 दाल और सादे चावल की प्लेट, पानी बोतल का 1200 रुपए का बिल मिला। पर ढाबा क्या करे, उसे सरकारी एजेंसी से लीज चाइनीज इंटीरियर की तड़क भड़क में ढाबे को आधुनिक शक्ल देने, 5 या 18% टैक्स की वसूली को यात्रियों से वसूलना ही है। सभी उस दुष्चक्र के मारे हैं जिसमें 11 वर्षों से आर्थिकी फंसी है। मेरा मानना है कि मोदी सरकार का पिछले 11 वर्षों का सबसे बड़ा पाप पूरी आर्थिकी को महंगा व लुटेरा बनाना है। दुनिया में किसी भी देश ने कीमतों की वैश्विक गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल ईंधन की कीमतें लगातार ऊंची नहीं बनाए रखी। पर वैश्विक दाम गिरे, लागत 25-30 रुपए हुई, तब भी भारत में पेट्रोल डीजल ईंधन औसतन 100 रुपए प्रति लीटर बेचा गया। ऐसे ही बिजली के दामों पर टैक्स और मुनाफे की भूख है। नतीजा क्या हुआ? जवाब में यह तथ्य नोट करें कि आधुनिक युग में ईंधन ऊर्जा आर्थिकी की नसों का खून है, यदि वह महंगा तो महंगाई का सर्वव्यापी दुष्चक्र। तभी नोट करें कि भारत का नरक अब कभी भी किसी तरह की आत्मनिर्भरता, औद्योगिक क्रांति, AI क्रांति या कि वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकेगा। हर काम में ईंधन ऊर्जा चाहिए और भारत में सरकार ईंधन से टैक्स लूट रही है तो क्रोनी पूंजीवाद भी उसी के हवाले लूट रहे हैं। जब ईंधन ऊर्जा महंगी और टैक्स भारी तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता है। ठीक विपरीत चीन ने 11 वर्षों में क्या किया? चीन ने इन 11 वर्षों में सोलर ऊर्जा पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन की सोलर ऊर्जा क्षमता अब 689 गीगावाट की है और इनसे वह 1400 टेरावाट बिजली प्रति घंटा पैदा कर सकता है। सोलर एनर्जी और EV बैटरी और फिर पवन टर्बाइन की ऊर्जा से उसका वह भंडार बना है जिससे सस्ती बिजली सप्लाई है। लोगों का जीवन सस्ता हुआ, बीजिंग का प्रदूषण खत्म हुआ और पूरी आर्थिकी में ईंधन की घटती लागत से फैक्ट्रियों में इतना सस्ता सामान लगातार बनता हुआ है कि भारत में उतनी कम उत्पादन लागत की कल्पना ही संभव नहीं है। यह वैसा ही सत्य है जैसे एक कार में महीने में 10,000 रुपए का पेट्रोल भरवाना और EV यानी इलेक्ट्रिक कार ले तो 1,200 रुपए की बिजली का बिल। चीन का राष्ट्रपति Xi Jinping मंदिर नहीं बनवाता, अतीत की कहानियों जुमलों से जिंदा नहीं है। वह और चीन सभ्यता के बुद्धिमान वैश्विक रियलिटी, अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीक और भविष्य के सिनेरियो में दिन रात सोचते बहस कर नीतियां बनाते होते हैं। जबकि भारत के मौजूदा समय में क्या है? भारत में वह विकसित नरक निर्माण है जिसमें वित्तीय प्राथमिकता नागरिकों की बेसिक आवश्यकताओं पर आंख मूंद कर टैक्स लगाना है। सोचना ही नहीं कि हवा, पानी, खान पान, सड़क, बिजली को सुलभ, सस्ता, शुद्ध नहीं रखा गया तो न मानव शक्ति के फेफड़े दौड़ेंगे और न मनुष्य शरीर काम करेगा। क्या तो देश में उत्पादकता होगी और ऐसी नस्ल कैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकेगी? इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।